दूसरा सलातीन दसवां बाब। और सामरिया में अखियब के 70 बेटे थे। सो याहू ने सामरिया में यज़रेल के अमीरों में यानी बुजुर्गों के पास और उनके पास जो अखियब के बेटों के पालने वाले थे खत लिख भेजे कि जिस हाल तुम्हारे आका के बेटे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे पास रथ और घोड़े और फसीलदार शहर भी और हथियार भी हैं, सो इस खत के पहुंचते ही तुम अपने आका के बेटों में सबसे अच्छे और लायक को चुनकर उसे उसके बाप के तख्त पर बिठाओ और अपने आका के घराने के लिए जंग करो। लेकिन वो नहायत हरासा हुए और कहने लगे, देखो दो बादशाह तो उसका मुकाबला ना कर सके, पस हम क्यों कर सकेंगे। सो महल के दीवान ने और शहर के हाकिम ने और बुजुर्गों ने भी और लड़कों के पालने वालों ने याहू को कहला भेजा, हम सब तेरे खादिम हैं और जो कुछ तू फरमाएगा वो सब हम करेंगे, हम किसी को बादशाह नहीं बनाएंगे, जो कुछ तेरी नजर में अच्छा हो सो कर। तब उसने दूसरी बार एक खत उनको लिख भेजा कि अगर तुम मेरी तरफ हो और मेरी बात मानना चाहते हो तो अपने आका के बेटों के सिर उतार कर कल यज़रेल में इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। उस वक्त शहजादे जो 70 आदमी थे शहर के उन बड़े आदमियों के साथ थे जो उनके पालने वाले थे। सो जब ये नामा उनके पास आया तो उन्होंने शहजादों को लेकर उनको यानी उन 70 आदमियों को कत्ल किया और उनके सिर टोकरों में रखकर उनको उसके पास यज़रेल में भेज दिया। तब एक कासिद ने आकर उसे खबर दी कि वो शहजादों के सिर लाए हैं। उसने कहा कि तुम शहर के फाटक के मुदखल पर उनकी दो धड़ियां लगाकर कल सुबह तक रहने दो। और सुबह को ऐसा हुआ कि वो निकलकर खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, तुम तो रास्त हो, देखो मैंने तो अपने आका के बरखिलाफ बंदिश बांधी और उसे मारा, पर इन सबों को किसने मारा। सो अब जान लो कि खुदावंद के उस सुखन में से जिसे खुदावंद ने अखियब के घराने के हक में फरमाया कोई बात खाक में नहीं मिलेगी, क्योंकि खुदावंद ने जो कुछ अपने बंदा एलिया की मार्फत फरमाया था उसे पूरा किया। सो याहू ने उन सब को जो अखियब के घराने से यज़रेल में बच रहे थे और उसके सब बड़े बड़े आदमियों और मुकर्रब दोस्तों और काहिनों को कत्ल किया, यहां तक कि उसने उसके किसी आदमी को बाकी ना छोड़ा। फिर वो उठकर रवाना हुआ और सामरिया को चला और रास्ता में घड़ियों के बाल कुतरने के घर तक पहुंचा ही था कि याहू को शाहे यहूदा अखजिया के भाई मिल गए। इसने पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा, हम अखजिया के भाई हैं और हम जाते हैं कि बादशाह के बेटों और मलिका के बेटों को सलाम करें। तब उसने कहा कि उनको जीता पकड़ लो। सो उन्होंने उनको जीता पकड़ लिया और उनको जो 42 आदमी थे बाल कुतरने के घर के हौज पर कत्ल किया, उसने उनमें से एक को भी ना छोड़ा। फिर जब वो वहां से रुखसत हुआ तो यहू नदाब बिन रेकाब बिन राकाब जो उसके इस्तकबाल को आ रहा था उसे मिला। तब उसने उसे सलाम किया और उससे कहा, तेरा दिल ठीक है जैसा मेरा दिल तेरे दिल के साथ है। यहू नदाब ने जवाब दिया कि है। सो उसने कहा, अगर ऐसा है तो अपना हाथ मुझे दे। सो उसने उसे अपना हाथ दिया और उसने उसे रथ में अपने साथ बिठा लिया और कहा, मेरे साथ चल और मेरी गैरत को जो खुदावंत के लिए है देख। सो उन्होंने उसे उसके साथ रथ पर सवार कराया। और जब वो सामरिया में पहुंचा तो अखियब के सब बाकी लोगों को जो सामरिया में थे कत्ल किया, यहां तक कि उसने जैसा खुदावन ने एलिया से कहा था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। फिर याहू ने सब लोगों को फराहम किया और उनसे कहा कि अखियब ने बाल की थोड़ी प्रस्तिश की, याहू उसकी बहुत ही प्रस्तिश करेगा। सो अब तुम बाल के सब नबियों और उसके सब पूजने वालों और सब पुजारियों को मेरे पास बुला लाओ, उनमें से कोई गैर हाजिर ना रहे, क्योंकि मुझे बाल के लिए बड़ी कुर्बानी करना है। सो जो कोई गैर हाजिर रहे वो जीता ना बचेगा। पर याहू ने इस गर्ज से कि बाल के पूजने वालों को नेस्त कर दे, ये हीला निकाला था। और याहू ने कहा कि बाल के लिए एक खास ईद की तकदीस करो। सो उन्होंने उसकी मुनादी कर दी और याहू ने सारे इसराइल में लोग भेजे और बाल के सब पूजने वाले आए, यहां तक कि एक शख्स भी ऐसा ना था जो ना आया हो। और वो बाल के मंदिर में दाखिल हुए और बाल का मंदिर इस सिरे से उस सिरे तक भर गया। फिर उसने उसको जो तोशा खाना पर मुकरर था हुक्म किया कि बाल के सब पूजने वालों के लिए लिबास निकाल ला। सो वो उनके लिए लिबास निकाल लाया। तब याहू और यहू नदाब बिन रेकाब बाल के मंदिर के अंदर गए और उसने बाल के पूजने वालों से कहा कि तफ्तीश करो और देख लो कि यहां तुम्हारे साथ खुदावंत के खादिमों में से कोई ना हो, फक्त बाल ही के पूजने वाले हों, और वो जबीहे और सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानने को अंदर गए। और याहू ने बाहर 80 जवान मुकरर कर दिए और कहा कि अगर कोई इन लोगों में से जिनको मैं तुम्हारे हाथ में करूं निकल भागे तो छोड़ने वाले की जान उसकी जान के बदले जाएगी। और जब वो सोख्तनी कुर्बानी चढ़ा चुका तो याहू ने पहरे वालों और सरदारों से कहा कि घुस जाओ और उनको कत्ल करो, एक भी निकलने ना पाए। चुनाचे उन्होंने उनको तैदेक किया और पहरे वालों और सरदारों ने उनको बाहर फेंक दिया और बाल के मंदिर के शहर को गए। और उन्होंने बाल के मंदिर के सतूनों को बाहर निकालकर उनको आग में जलाया और बाल के सतून को चकनाचूर किया और बाल का मंदिर ढाकर उसे संडास बना दिया, जैसा आज तक है। यूं याहू ने बाल को इसराइल के दरमियान से नेस्तो नाबूद कर दिया। तो भी नबात के बेटे यरोबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, याहू बाज ना आया, यानी उसने सोने के बछड़ों को मानने से जो बैतेल और दान में थे किनारा कशीना की। और खुदावन ने याहू से कहा, चूंकि तूने ये नेकी की है कि जो कुछ मेरी नजर में भला था उसे अंजाम दिया है और अखियब के घराने से मेरी मर्जी के मुताबिक बर्ताव किया है, इसलिए तेरे बेटे चौथी पुश्त तक इसराइल के तख्त पर बैठेंगे। पर याहू ने खुदावंद इसराइल के खुदा की शरीयत पर अपने सारे दिल से चलने की फिक्र ना की और यरूबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, अलग ना हुआ। उन दिनों खुदावंद इसराइल को घटाने लगा और हेजाइल ने उनको इसराइल की सब सरहदों में मारा, यानी यर्दन से लेकर मशरिक की तरफ जल्लाद के सारे मुल्क में, और जदियों और रोबेनियों और मनस्सियों को एरोएर से जो वादी अरनोन में है, यानी जल्लाद और बसन को भी, और याहू के बाकी काम और सब जो उसने किया और उसकी सारी कुवत का बयान, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और याहू अपने बाप दादा के साथ सो गया और उसने उसे सामरिया में दफन किया, और उसका बेटा यहूअक्स उसकी जगह बादशाह हुआ, और वो अरसा जिसमें याहू ने सामरिया में बनी इसराइल पर सल्तनत की 28 बरस का था।